सतपुरुष कबीर साहब कृष्ण रूप ना कराते हैं, क्योंकि जहां पर महाराज कहते हैं दास गरीब साहब दुखता धड़े, जहां किसी के साथ जुल्म होता है वहां पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आकर के मदद करते हैं, नहीं तो यू काल इनको खत्म कर दे, भक्ति उठ जावे यहां से खत्म हो जावे, को भक्ति न चावे भी को ना, अरे यू तो चावे है काल के भक्ति ना करे कोई किसी प्रकार, लेकिन बंदी छोड़ इस भक्ति की आस्था जमाए रखने की खातिर खुद आकर प्रकट होते हैं। कबीर साहब ने खुद नरसिंह रूप बनाया था। अब इन बातों का अविश्वास न्यू होगा, क्योंकि हमने यही सुना है कि विष्णु भगवान ने ही नरसिंह रूप धारण किया। अब हम आपको इसको बहुत लंबा चौड़ा उदाहरण देकर बतावेंगे। कई ऐसा होता है कि हमारे गुरुदेव तलवंडी भाई में रहते थे, वहां पर एक उग्रवादियों के समय में रास्ते में एक लाला जी तलवंडी का उग्रवादियों ने पकड़ लिया, उसकी मोटरसाइकिल भी उसमें कुछ उगाही करके आया था, शाम के दिन छिपन्न हुआ था, सर्दियां के थोड़े थोड़ी सर्दियों के दिन थे, तो रास्ते में पकड़ लिया उनको, मोटरसाइकिल वहीं डाल दी, उसको जीप में बिठा ले गए, जाके ईखों में बांध दिया। उन्होंने शराब पी रखी थी दोनों उग्रवादियों ने, तो उसको बांध करके वो निश्चिंत हो गए कि अब इसको फिर देखेंगे, इसको खत्म करेंगे, सुबह इससे पूछेंगे कहां पैसा रखा इसने। तो उसके मन में एक तो दारू पी का वही लौट गया एक साइड में, एक चला गया कहीं दूसरे स्थान पर किसी कोठड़े काठड़े में कोठे में सौन की खातिर। तब उस लाला जी ने उस भक्त नारज करी, हे परमात्मा हे गुरुदेव आज मेरी जान बचाओ मालिक। कहते हैं बहुत तड़प हुई, उसी समय हमारे गुरुदेव वहां पर प्रकट हो जाते हैं। अब ये बात सुन दण के फिर आप पर समझ में आ जाएगी आपका किसने नरसिंह रूप बनाया था। उसी समय उन्होंने देखा कि महाराज जी खड़े हैं और उसके सारे जो बंधन बांध रखे थे उसको जुड़ रखा था वो आपा खुल गए। एकदम देखा है कि महाराज जी खड़े हैं और बहुत वृद्ध दिखे हैं। बोले गुरुदेव आप क्यों कराए यहां पर, हे महाराज ये बंदी छोड़े स्वामी जी आप क्यों किस तरह है महाराज। कहने लगे आ मेरे साथ चल तुम्हारे घर। महाराज मैं तो ये भी नहीं मालूम घर किधर है, या तो रास्ते का बिना मेरा जावा की साइड में अग मेरे पीछे आ जा, पीछे पीछे गारिया में क पानी में क ईखों में क निकल क अर तलवंडी मंडी में आकर उनके घर के बारे में आगे छोड़ के कहने लगे अपने घर ने जा। रात के समय उनके घर वालों ने सब रिश्तेदारियों में टेलीफोन कर पूछ लिया कि वो कहाँ है, कुछ किसी ने नहीं बताया कि हमारे यहाँ कोई नहीं आया, वो तो नहीं आया। उसने समझ लिया कि वो खत्म हो चुका है अब नहीं जीवेगा, क्योंकि शाम के समय कोई भी बाहर रह गया उसको मृत मान लिया जाता था, ऐसा खतरनाक समय चल रहा था पंजाब में। तो उसने आके कुआड़ खुटखुटाया, अब कुआड़ कौन खोले, वहां से 5 बजे मंडी में सारी में ताला लग जाया करता था, सब अपने अंदर घुस जाया करते थे। आवाज दी, घरवालों ने देखा कि आवाज तावस अपने उसकी, फिर ऊपर के देखा उन्होंने कि कहीं इनके साथ उग्रवादी तो नहीं है, अभी इनको ले आए हो पकड़ कर आवाज दिवा रहे हो, वो अकेला खड़ा दिखा। उसी समय भाग्य आए पैड काले में कर दो क्वाड़ खोल दिया, एकदम ऊपर ले जाकर फिर बंद कर लिया। उनसे पूछा कि कहाँ थे, उसने बताया कि हम उग्रवादियों ने पकड़ लिया था मेरे को, फिर कैसे आए कि गुरु जी अन छुटवाए। गुरु जी बोल बंदे छोड़ मारा, कहते गुरु जी अन छुटवाया, गुरु जी गए थे वहां पर मैंने खोल के लाए, आज मैं मार दिया जाता। तो महाराज जी उन दिनों बीमार चल रहे थे, बड़े महाराज कुटिया में थे तलवंडी, तो कहने लगे वो सारा परिवार सुबह सुबह हे सतगुरु आपने रक्षा कर दी, ये बंदी छोड़ हे गुरुदेव, हे स्वामी जी आपकी कृपा से हमारा लड़का बच गया है, महाराज आपको कैसे मालूम हुआ आप वहां पहुंच गए। अब वो न कह रहा के कह रहे हो तुम, मुझे ध्यान अच्छी तरह बताओ कहना क्या चाह रहे हो, कौन मर गया कौन बच गया। उन्होंने फिर सारी बताई कि महाराज आपको ज्ञान नहीं, आप वहां गए इस बच्चे को लाए निकाल के, ने बोला भाई बंदी छोड़ते, ये कबीर साहब गरीब दास जी थे, अरे मेरे पूछा भी ना जाता मैं किस जाऊं था बावड़ो। अब देखिएगा कि वो अपने हंस को बढ़ाई देते हैं और काम उसके बदले में आप कर जाते हैं, क्योंकि वो अगर उस गुरु की बेइज्जती हो सै तो बंदी छोड़ की बेइज्जती हो सै। भक्ति से उठ जावेगा इंसानों का ये मन, तो इसलिए बंदी छोड़ा करके। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारे गुरुजियां ना छुटाया, क्योंकि प्रत्यक्ष गुरुजी, और ये भी नहीं कह सकते कि सतपुरुष ने नहीं छुड़ाया। अब जो उसके बदले में आकर रक्षा करते हैं तो उसमें उसमें कोई अंतर नहीं है, अंतर है भी नहीं और मानना भी नहीं चाहिए। जिस पर साहिब राजी ताही को तो बंद, उसी पर बंदगी कर दो जिस पर परमात्मा प्रसन्न हो रहा है। ये तो एक मोटे उदाहरण है यहां पर, जिससे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जिस पर राजी से जिस व्यक्ति पर उस तमेल करण ते सारे काम सरेंगे। इसी प्रकार जिस पर परमात्मा बंदी छोड़ प्रसन्न है उसी की शरण में रहने से आपको लाभ मिलेगा। ऊंचे उसके वर्ण आगे बैठे रहो सारा दिन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी प्रकार हम यथार्थता को भूल कर अपने उन्हीं मनमुखी साधनों को अपना लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम फिर लग 84 के गेड़ में आकर और बंदी छोड़ इतने दयालु हों ये फिर ढूंढने से दुख सुख पाके। देखिए कहां कहां से आपको इकट्ठा कर लिया हमारे दर से चुथ जीव को, अरे ये अपना शक्ति प्रदान कर दी। हम जाकर के जगह जगह उनकी वाणी का ढंडोरा पीटते हैं, उनकी गवाही देते हैं, बंदी छोड़ की कसम खा खा कर कहते हैं कि इस बराबर शक्ति नहीं भाई। तो आज ये आपने हंसों को फिर इकट्ठा कर लिया, तो मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। किसी भी अनजान व्यक्ति की बातों में नहीं आना। सबसे पहला आपको दुखदायी ये होगा कि किसी की बात में आकर के अपने इस उद्देश्य को भूल मत जाना। 250 वर्ष हो गए गरीब दास जी यहीं थे बंदी छोड़, और वही छुड़ानी गांव और वही। तो इसी प्रकार 250 वर्ष से बंदी छोड़ भी वहीं थे और महाराज का शास्त्र भी वहीं था। वो चुप रहे बंदी छोड़, देखते रहे कि कहते हैं कबीर साहब भी कहते हैं कि जय तू चाहवे राम को पाक्या सेती खेल और कच्ची सरसम पीड़ के भाई खड़ हो ना तेल। वो कच्चा काम नहीं करते बंदी छोड़, ठीक है कोई पाठ करवाता है थोड़ा बहुत लाभ मिल जाएगा, वो भी गुरु के बिना नहीं। अगर ऐसा होता, हमने देखा कि किसी का वो भगत जन, हम भी उनके साथ जाया करते थे, वो किसी का पाठ एक बार कराया करते थे, 10 साल तक पाठ उनका नहीं होया करता था। 10-5 साल में किता को ब्याह शादी होंगी तो बेसकता उनके मन में आ जाता कि भाई जो है ना पाठ भी करवावांगे। कई बार वो भी चूक जाया करती थी, थोड़ा तेज करो इसको। तो आज बंदी छोड़ की कृपा है कि हमारी ये पुण्यात्मा साल में 3-3, 4-4 पाठ करवा लेते हैं। एक तो सहम तो हो जा सह आप करवा दे बंदी छोड़, ईसा सुख दे है आत्मा नु कुरला उठे सह बंदी छोड़ के नाम पर जरूर करना चाहिए पाठ। ये पीछे यहां पर डिप्टी कमिश्नर थे जो कि कल आए हुए थे, अब डायरेक्टर हैं ये हरियाणा के लोकल बॉडीज के। ये यहां पर है श्री गुलाब सिंह जी स्रोत IAS। तो इन्होंने मेरे ख्याल में ये नवंबर में शुरू किए थे, हमने पहला पाठ नवंबर 96 में किया और अप्रैल मई में ये चले गए थे ट्रांसफर होकर के डायरेक्टर बनकर। अब देख लो 5-7 महीना में 5 पाठ करवाए थे इन्होंने और फिर एक कुटिया में करवाया। अब पिछली की हुई कमाई तो इनके सामने है कि आज एक राजा है और अगली फिर दोनों हथा शुरू कर दी बंदी छोड़ की वाणी का। तो इससे सिद्ध होता है कि बंदी छोड़ प्रसन्न है कि जो हम कार्य कर रहे हैं, और इसका परिणाम यही हुआ कि आपको यहां पर अवसर भी देते हैं, हिम्मत भी दें से और समय भी देते हैं और धन भी दें से, आपकी आप आस्था बन जाएगी। तो ये कच्चा काम नहीं करते बंदी छोड़। तो इन्होंने 250 वर्ष इंतजार करनी पड़ी कि कोई इस बात को समझ के और नियत से, इसमें छल कपट नहीं चलता, इसमें पॉलिटिक्स राजनीति को बंदी छोड़ पसंद कतई नहीं करता, यह हमने आजमा के देख रखी। अगर मैं भी कसूर करूंगा तो मेरा वो दोनों बादशाह अपनी छतरी अपनी छाया टालेगा ऊपर तय, और भाई ने वाह बादशाह घर तो बाहर लकड़ते पाला पड़े सही कर्म का जाडा लगेगा सर्दी लगेगी। इसी प्रकार सतगुरु अपनी छत्र छाया में अपने बच्चे ने छाती का लाकर रख, जिस प्रकार छोटे से बच्चे ने मात पिता और दादा गुदड़े में लको कर रख्या करे अके देश का सर्दी ना लग जा, तो न्यू हमारे को बंदी छोड़ जब उसकी शरण में आ जाते हैं इस प्रकार रखे से। पर हमारी कुमत जो से थोड़ी को ना चौथे युग में आ गया इकट्ठी होती होती आरी से। महाराज कहें योगन योगन की वासना हुई इकट्ठी आन निर्मल क्यों कर होगा कोई संत लग्या नहीं कान। तो बात यही हमारा कहने का तात्पर्य है कि जो 40 साल से वहां पर पापड़ बेल रहे थे उनकी करणी मंत्र था, उनकी कथनी कुछ और करणी कुछ रही। यहां पर कथनी थोड़ी हो करणी अधिक हो जब परमात्मा बंदी छोड़ प्रसन्न होते हैं। इन सारा बेरा हम सोच क्या रहे हैं और करांगे क्या, हम इस तक के छुपा सकते हैं। जीता दास गीसा पंथ के अंदर गीसा संत का एक परम शिष्य हुआ है, वो कहते हैं अपने गुरु को परमात्मा स्वरूप समझ कर चले तो वह कहते हैं कि मेरे पर्दे के महरमी पिया जी अपने गुरु को कहते हैं, और आपसे कहां लकोलो जिया जी, पर्दे तक के आप मेरे जानने वाले हो, बाप तो मैं के छुपा सकता हूं मालिक। तो इस प्रकार हमारा भाव बना रहे कि हम ईश्वर से कुछ नहीं छुपा सकते, वो सारी जानते हैं। तो यही कारण रहा कि सारे हरियाणा में मुश्किल से साल भर में मेरे ख्याल में 5-4 पाठ किसे किसे का होया करते थे, वो भी एक पिछली कोई रिवाज रिपस्सी बनी हुई हो तो वो हो जाता था। आज बंदी छोड़ की कृपा से एक महीने में 25 और 26 27 पाठ होते हैं, वो भी हम एक दो अपनी किसी कारण की जो है ना रेस्ट की खातिर बंद टाल कर देते हैं, ना तो 30 के 30 पाठ हम कर सकते हैं। और इसी परिणाम स्वरूप आज मार्च तक हमारे पाठ आगे जा लिए, जबकि पहले तो हम करा करते 3 दिन के हिसाब से चला करता मैं, अब पाठ तो 3 दिन का ही होता है लेकिन मैं सिर्फ एक रात्रि में जा सकता हूं, शाम को जान पाऊं सो मध के दिन शाम के समय, तो पाठ उसी दिन शुरू हो जाए। जैसे आज पाठ एक शुरू हुआ था कल दूसरा हो जाएगा परसों तीसरा हो जाएगा, पाठ रोज एक प्रकाश हो जाता है। इसके हिसाब से लाइयो के एक महीने में 300 पाठ हो जाते हैं। तो आप देखियो बंदी छोड़ना दोनों हाथों बरसन लाग रहे हैं आज, हरियाणा पंजाब और दिल्ली इसमें सतगुरु की विशेष रजा होने लाग रही है। ये तो शुरू से ही ऐसे थे बंदी छोड़, आज के कोना सतयुग से चले आ रहे हैं, सतयुग से पहले के भी हैं ये तो, जब कुछ भी नहीं था तब भी बंदी छोड़ कबीर साहब थे, गरीबदास जी थे, सतसुकृत नाम से सतयुग में आए, त्रेता माय मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से, और कलियुग के अंदर बंदी छोड़ आज कबीर नाम से आए। अवतार तो इनके और भी होते रहेंगे, जैसे गरीब दास जी उन्हीं का अवतार थे, लेकिन महिमा कबीर साहब की रहेगी, एक नाम ही चलता है इनका, शक्तियां उनकी आती रहेंगी, नाम बदलते रहेंगे, समय समय पर आकर के अपने हंसों को फिर इकट्ठा करते रहेंगे। हम तो बंदी छोड़ के नौकर हैं, जिस प्रकार एक कुबाड़िया होता है सेठ साहूकार, वो कुबाड़ी का काम करता है, वो अपने नौकर को जिसको वो 10-20 रुपए 30-50 रुपए रोज के देता है उसको के करा है एक चुंबक दे दे से डोर का बांध का, और वो उस चुंबक को ऐसे घिसराते चलते हैं, इन्हों टेकते चलन से, उस चुंबक के साथ लोहे के कण जो कि रेत में रले हुए हों उसका चिपक जाते हैं, और वो क्या करता है वो नौकर उसको उतार कर अपनी झोली में डाल लेता है, फिर चुंबक रखना शुरू कर देता है, शाम तक 10-20 किलो लोहा वो ला करके कुबाड़िये को दे देता है। इसी प्रकार बंदी छोड़ने अपने नाम रूपी वाणी रूपी चुंबक हमें दे रखा से, हम हर गांव में इसको टिका टिका कर देख रहे हैं, जो बंदी छोड़ के हंस यानी अनुकूल व्यक्ति है, जो अधिकारी जीव है वो तो सतगुरु की बात सुनते चिपक जाते हैं, और जो कुबाड़ से जो कि वो नहीं उनके अनुकूल नहीं है सतगुरु का हंस, اس نے ہم 100 بار کہلا جب بھی نہیں ہماری بات سن سکتا, کیونکہ جس پرکار لوہے نے لکڑی پہ 100 بار رکھ لے اور کسی چیز پر رکھ لے وہ نہیں پکڑے گا. تو بندی چھوڑ کے جو پیارے ہنس ہیں وہ ہر گاؤں سے اکٹھے ہو کر کے آج دیکھ لو کہاں کہاں سے آ کر کے, اور 2-3 سال کے اندر اندر, 2.5-3 سال کے اندر اندر بندی چھوڑ کی کرپا سے ہزاروں کی تعداد میں بھگتجن اکٹھے ہو گئے. ایک پریوار میں شروع ہو سے سارا پریوار بندی چھوڑ کی سرن میں آ جاتا ہے. اور ابھی یہی ہو رہا ہے اس کی وپریت کے ایک ویکتی بھی بگڑ گیا تو سارا پریوار کا ہی وہی حال ہو جاؤ گا. تو ساودھانی زیادہ سے اس میں اپنے اہنکار ماننے کھو کر رکھے ماٹی سمجھ لے ہوئے, جیسے کال ادارن دیا تھا. تو اسی پرکار داس بھاؤ ہمارے اندر آ جانا چاہیے. تو کہنے ہم یہ چاہ رہے تھے کہ وہ کرشن بھگوان جب وہاں پہنچے بندی چھوڑ کرشن روپ بنا کر کے جاتے. اب دیکھیے گا کہ پرم شکتی جو ہے وہ بھگوان کرشن کے بھی ساتھ ہے, کبیر صاحب بھگوان وشنو برہما کے ساتھ بھی ہے, شنکر جی کے ساتھ بھی ہے, کیونکہ یہ تینوں ان کے شش ہیں. اور ہمارے تو وہ بہت اچھی آتما ہیں, پرماتما اس لیے کہلاتے ہیں, ان میں دیا بھی زیادہ ہے, وہ سہن شیل بھی زیادہ ہے. وہ تینوں کے تینوں برہما وشنو مہیش بھی بندی چھوڑ کے شش ہیں. کہتے ہیں ہم نے برہما کو نام دیا اوم منتر دے رکھا برہما کو, وشنو کو نام دیا ہریم نام وشنو کو دے رکھا ہے, اور شنکر بھگوان کو سوہم منتر دے رکھا ستگرو نے, اور وہی منتر ہم پھر ان کے انوسار بھی جاپ کر رہے ہیں. تو ان کا جو اصلی نام ہے وہ ابھی ان کو نہیں دیا, کیونکہ انہوں میں وہ بھاؤ اتپن نہیں ہوا. تو بے شک ہم پہلا منتر دیتے ہیں, وہی پرمپرا ہے, اس منتر کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں کچھ آستہ بڑی ہے تو ہم سانس کا سمن دے دیتے ہیں. اور بھی زیادہ وہ پرکھ کی جاتی ہے کہ اس میں کتنی آستہ بڑھ لی ہے, اس کے بعد پھر اس کو سار نام دیا جاتا ہے. آستہ کے ساتھ اس کی کمائی دیکھی جاتی ہے, کمائی کا نعرہ پتا لگ جائے ہم نے کہ اس میں کمائی ہے کہ نہیں ہے, اتنا بندی چھوڑنے سے حصہ دے رکھا ہے تو اس کو سار نام دیا جاتا ہے. اس کو ویسے نہیں دے, ہم چاہے کتنا پیارا ہو, چاہے کالی مانو, چاہے راجی رو, وہ اس کی اچھا. تو اسی پرکار ستگرو مہاراج نے کہا کہ نام کے بعد پھر سبد دیا جاتا ہے, سار سبد, وہ تو بہت ہی کتینو تاک ہے اور پرکھ کے جمع گھس نکل لے ہے جیو کی جب دی جاتی ہے. بندی چھوڑنے بتا دیں گے کہ اب یہ ادھیکاری ہو چکا ہے, جیسے کال آپ کو بتایا تھا. یہ ساری بہنی دراجے بیچ میں راستہ چھوڑ دو, ساری دروازے بیچ کمبل کا ساتھ راستہ نا, ادھر بہت جگہ ہے نا, دور تک بیٹھو, ادھر آ جاؤ ساری. ایک دن تم خیال کرا کرو بھائی بیچ میں کھڑے ہو کر نا, ان بیبر نے پر انہوں نے بٹھا دیا. تو اس پرکار اب اس سائڈ سے میں رہا کرو, ادھر سے آگے نہیں اڑو, فلم والے ادھر سے ہو کر کے, یا ادھر سامنے کھڑا ہو جاؤ وہاں پر, یا اور سائڈ دیکھ لے اپنی کوئی سی. سننے والے نے نوکا نے چہرہ دکھنا چاہیے بولنے کا, جب پتا لگا جب من لگ گئے سے ان کا. سائڈ سی مور ادھر پکڑ تھوڑا سا. تو وہ تینوں کے تینوں بھی بندی چھوڑ کے انس ہیں, یعنی مہاراج کہے ہیں کہ ستگر تانا تنیا, گریب داس جی کہیں ستگر نے تانا تنیا, اور تینوں بے راچ رچیڑا ہیں. راچ رچیڑا یہ تانی بنان کے اس وستو نے سامان نے راچ کا آکریں, رچیڑا کا آکریں, کہ یہ جو تینوں برما وشنو مہیش کے دوارا یہ سرشٹی یہاں کی رچوائی ہے, اور یہ تینوں راچ رچیڑا ہیں. یعنی ایک تو بناوس ہے, ایک پالن پوشن کرتا ہے, اور ایک سہار کرتا ہے. یہ تینوں راج رچیڑا ہیں, ستگر کے ہیں. تو یہاں پر بھگوان کرشن کے روپ میں ستگرو مہاراج آتے ہیں, اور آ کے کرشن بھگوان پوچھا ہے, کیونکہ اب کرشن کا ہی رول چلے گا. وہ اب جیسے اوپر سے حکم آیا ایس پی نہیں جانا ہے, تو وہاں ایس پی ہی جاوے گا. دوسرے موٹے اکثر میں یہی سمجھ لو کہ حکم پردھان منتری کا ہے یا مکھیہ منتری کا ہے, لیکن اس موقع پر ایس پی جائے گا, وہ اپنا کاریہ وہاں پر پورا کر رہا ہے, تو وہ کاریہ اسی کے ذمہ سے اسی کے دوارا ہی کروایا جاؤ گا. پردھان منتری آ کر ایس پی والا کام نہیں کرے گا. उसमें अपनी शक्ति भेज देगा, हुक्म शक्ति है, जाइए आप वहां पर ये काम कर दीजिए, ले फिर उसने केटाल से वो जो चाहो अपना नियम अनुसार कर देगा। तो यहां पर सतगुरु महाराज के हुक्म से समझो या उनका स्वरूप समझो, वही खुद आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। वहां भी कृष्ण बैठा है और वहां भी प्रकट हो गए कृष्ण जी के रूप में, जैसे अभी गुरुजियों का उदाहरण मैंने आपको दिया था। तो आकर के द्रौपदी कहती है भगवान बहुत दुखी हो गए, क्या बात है भाई कि दुर्वासा 88,000 ऋषि लेकर आ गया भगवान और हमें श्राप देना चाहता है। तो भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि पहले मुझे भोग लगवाओ द्रौपदी, भोजन पवाओ खवाओ, जब मैं जाकर के आपको कोई सहयोग दे सकता हूं। अब वो कहने लगी महाराज रोटी का ही रोला है, क्योंकि मेरे पास एक पात्र है सूर्यदेव का दिया हुआ, अगर मैं भोजन नहीं खाती तो इतने तो मैं कितने ही आ जाओ मैं भोजन दे सकती हूं, लेकिन मैं भोजन खा चुकी हूं, अब मैं असमर्थ हूं, उसमें कुछ नहीं बचा है, कृपा हमारी दुविधा को हमारी मुसीबत को दूर करो मालिक। कहने लगा द्रौपदी ढूंढ द्रौपदी ढूंढ कोई भोजन का किरका, प्रथम करूं आहार फिर मेटू मुनिजन की तरखा, पहले मैं आहार करूंगा भोजन करूंगा। कहते हैं जब है द्रौपदी पात्र दिखलाया तो उसमें एक साग का पत्ता लगा हुआ था उस पात्र में उस बर्तन में, तो घोड़ पिया जगदीश वहां मुनिजन अफराया, उसको घोड़ के नवलिस में पानी गाल के अर लिया, थोड़ा थोड़ा चरतरा सा एक साग का पत्ता लगा हुआ हरे साग का उसको पी गए। कहते वहां पीते ही और वहां पर मुनिजन अफरा दिए 88,000 छिका दिए, इन्हें पेट पाटन न हो गया। कहते जा भीम इबला बुलाकर उनको, भीम को कहा कि जाओ उनको बुला के लाओ कि आओ भोजन कर लो ऋषि देव। तब जाता है भीम, वहां देखे हैं कि ऋषि जी खाखा रोड जड़ू करडे छकरे हो और लोटन लाग रहे से नो मरोड़े मारे से अक्यो करे यो अजम हो जा गणा खा लिया। तो जाके भीमसेन कहते हैं कि चलो ऋषि देव भोजन तैयार से, जो जो आपने कहा था वही भोजन बनवाया है, के कहा था कि आज के बोए आंब मंगाओ और काम धेनु का आज के बोए आम अंगूरा काम धेनु का दूध कपूरा, आज के बोए धान मंगाओ और मान सरोवर का जल लियाओ, मतलब ना उनकी चीज आज जय बोए आज जय आंब लागे और जब मैं खाऊं। ऋषि बोले आए थे ना को बदकरण खातर उन्हें कौन सा भोजन खाना था, तो ने बोले जी चलो सारा सौदा तैयार हो रहा। ऋषि जी ने बोले भाई भीमसेन हम तक कति छिक लिए कति गुंजाइश नहीं रह रही, कोई रोटियां का नाम ले है ना बल्कि उल्टी पड़न हो जाए इतने करड़े छिक रहे हम तक। तो कहने लगा महाराज भोजन तैयार से, अब तुम्हारे कौन आया है? वो कहने लगा जी मारा भगवान कृष्ण आए हैं। तो ने बोला हम तो छिक लिए और भगवान करे थारे दुश्मन मरियो, आशीर्वाद दे दिया आया था श्राप देन और दिवा दिया आशीर्वाद। कहने लगा भगवान करे थारे दुश्मन मरियो, दुश्मन उनके कौरो। महाराज कहते हैं दुर्वासा के श्राप की लगी अपूठी लात, उल्टी लात कोरुआएं कहलागी। तो इस प्रकार बंदी छोड़ने इसमें रहस्य छुपा रखा है कि इसको समझने की कोशिश करें। तो यहां लिखा है कि रोटी कृष्ण देव को पाई 88 की खुदा मिटाई। अब यह इतनी बड़ी कथा एक चौपाई में बंदी छोड़ना भर दी। अब आपने ज्ञान हुआ जब भी इस वाणी को सुनोगे पढ़ोगे इस आरती को जब वो पूरी कथा घूम जाएगी, तो पूरी कथा का आप समझिए कि इस एक आरती को गा देने से ये इतनी कथा आपने कर दी उस घर में जिसमें आप रोटी खा खाते हो, ये इतनी कथा आपने कर दी, इन कथाओं का फल उनको मिलेगा, आपकी करनी में तो कोई कमी नहीं होगी। आपने इन कथाओं के बदले एक टूक खा लिया उनका, बाकी भजन सुमरण आप कर रहे हो आपका कति नहीं बिगड़ा, ज्यों का त्यों बना रहेगा। कितना गजब बंदी छोड़ने रहस्य डाला है कि इस कलयुग में बच सकते हो तो अन्यो बच सकते हो। तो यहां कहते हैं अब जित संत किसे कहते हैं, जो संत वही है चाहे बच्चा है चाहे बड्डा है, संत वही है जो इन क्रियाओं को अपना कर ठीक ढंग से नियम से चले वो संत है। और इन भक्तों को जो ये आरती करते हैं, खाना खाकर आरती जरूर करनी चाहिए, चाहे मन मन में कर दिए चाहे बोल कर कर लिए। आपके ऊपर कोई उस घर में जिसमें आप खाना खाते हो कोई आपके ऊपर उसका ऋण नहीं चढ़ेगा, और इसके कर देने से उनको उन कथाओं का लाभ पूरा मिलेगा। देख कितने ढंग से बंदी छोड़ की कृपा हमारे ऊपर हुई, इस घोर कलयुग में एक कथा को करण की खातिर 30-30 दिन लगाया करते पंडित जी, 30 दिन में भोग लग्या करता, 41 दिन में भोग लग्या करता था उस एक कथा का। रामायण शुरू कर देते तो रामायण बढ़ा के चढ़ा के कितनी कह लो उसने, और ये बंदी छोड़ 15 कथा एक ही अन्नदेव की आरती में उस घर में रोज ब दो दो कर देते हैं, 3 बार खाना खाते हैं 3 बार ही करते हैं। तो यहां लिखा है कि तंदुल विपर को दिए देख रची सुदामा पुरी अलेख। अब यह भी कथा कृष्ण और सुदामा की कितनी विस्तृत और कितनी रोचक है कि भाई देखो भोजन का भोग लगवाया था, तंदुल तंदुल कहे चावलों को, भगवान कृष्ण को सुदामा जी ने जब चावल खवा दिए तो उसके बदले में उसकी सुदामा पुरी रची, नहीं तो नहीं रची, क्योंकि पहले भी तो प्रेम था, पहले के वो जाना नहीं थे कि सुदामा हमारा प्यारा सा दुखी हो रहा से, पर जब तक वो भोग नहीं लगवा लिया चावलों का, मुट्ठी भर कर नहीं खा लिया भगवान कृष्ण ने, तब तक वो कुछ नहीं कर सके था, समर्थ होते हुए भी नहीं कर सके था। इसी प्रकार बंदी छोड़ हमें बताते हैं, आप बंदी छोड़ का पाठ करवाओ, उसके नाम पर कुछ दान धर्म करो तो मैं करूंगा। वे उनसे परम समर्थ हैं, कृष्ण भगवान से असंख्य गुणा ज्यादा शक्तिवान कबीर साहब हैं, पर ये भी फेल हो जाएंगे अगर आप कुछ तान पुण्य नहीं करोगे सतगुरु के नाम पर, फिर ये आपके उन दुखों को दूर करेंगे जो कि कितने भी ना हुआ करते। तो इसलिए इस पाठ और भोग का महत्व बता रहे, साथ में एक कथा के द्वारा पता नहीं कितने प्रकार की आपको शिक्षा दे रहे। तंदुल विपर को दिए देख रची सुदामा पुरी अलेख, आधीन विदुर का भोजन पाई कैरम बूढ़े मान बढ़ाई, मान बढ़ाई से हैं दूर आजज के हैं सदा हजूर। अब कहते हैं एक गरीब ब्राह्मण के घर में, गरीब विदुर भगत के घर में रोटी खा ली, कौरवों के वो 36 प्रकार के व्यंजन छोड़ दिए, वहां नहीं खाए भगवान ने। परमात्मा प्रसन्न कहाँ होता है कि जहां पर वो सच्चा प्रेम देखे से आधीनी भाव दासा तन हो से। एक बहुत लंबा विस्तार से कि भक्ति करे बिन भाव रे सो कोणे का जा, और विदुर का जीवन चले गए तज दुर्योधन राजा। भगवान कृष्ण विश्व विदुर का भोजन खान चले गए, राजा दुर्योधन के वो क्यों मेवा मान मिठाई नहीं खाई, मेवा वगैरह जो ला रखी थी। तो कबीर साहब भी कहते हैं कि खीर खांड पकवान मिले भाई साकेट संग नहीं जा, और लुखा सूखा भगत का रुचि रुचि भोग लगा। साकेट के घर में रोटी खान नहीं जाचे उड़ा वो क्या है, मैं कितने अच्छा व्यवस्था कर रखी हो, और लुखा सूखा अपने भगत का उस समान बना ले हुए वो सुखी होगा भगत संत जो है। तो कहते हैं विदुर का भगवान ने जाकर के पाया साग अलूणा, थाल नहीं था विदुर का धनी जिम में दौड़ा, और कहते हैं छतन व्यंजन छत्तीसों छोड़ के पाया साग अलूणा अनूणा जिसमें नून नहीं था नमक नहीं था, और वो हरा साग खा के बंदी छोड़ने यानी भगवान कृष्ण ने खुशी मनाई। मान बड़ाई से हैं दूर आजज के हैं सदा हजूर, बूक बाकला दिए विचार बहे चकवे कई एक बार। बूक बाकला बाकली बना, एक बार अकाल पड़ गया था बहुत भयंकर, अन्न खत्म हुआ, एक राजा ने अपनी नगरी में कई नगरियों में जगह जगह पर बड़े बड़े शहरों में बाकली बनवा दिया करते दो समय, उनका समय फिक्स कर रखा था कि इस समय से इस समय तक बाकड़ी एक बुगटा बूक यानी एक बूक नो गाल दिया करते थे, जोड़ी में गलवा के उसको खाओ अपना, दूसरी नहीं मिला करती उसको। और समय फिक्स था कि इतने समय के दौरान कोई आ गया तो ठीक से फिर नहीं होगा। तो वहां भंडारे पर एक भक्त गया, उसने देखा कि बूक उसका गाल दी, फिर देखा उसमें कढ़ाई में कि खत्म हो चुका है, दो चारा का रह रहा, सर पांच सात मेरे पीछे थे। तो पांच सातों के हिसाब से उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके उनको बांट दिया और कह दिया भाई भंडारा ही बंद हो गया। वो जब जा रहा था तो रास्ते में एक और भक्त आवा था और वो इतना भूखा था, उठा जा चले फिर बैठ जावे, चले फिर बैठ जावे, उसको मालूम था कि भंडारा चला हुआ है। तो वो जो आखिरी लेके आया था उसने देखा कि भंडारा खत्म हो चुका और बंद हो चुका। उससे वो पूछ बैठता है जो बेचारा चल भी नहीं सके था, भंडारे की तरफ जा रहा था, कहने लगा भाई भंडारा चल रहा से? उन्हें बोला भाई बंद हो लिया। वो कति एकदम अगर ले भाई आज तो रात पूरी हो नहीं सकती, तो मर जाऊंगा, एकदम हक्का सा मान कर पड़ गया। उन्हें बोला भाई न्यू ना करे, ले मेरे दौरे से तू ये ले ले। और वो उसने भी भूखा, उसने भी दो तीन दिन हो गए थे रोटी खाए, उस भूखे का गवा अपनी भूख यानी वो बाकड़ी कर दी ले ले ले। वो तो इतना भूखा मरे था कि एकदम सारा ने मुंह ठाक हटाया को नहीं, उससे के आंजले में फटाफट सारा में खा गया। और वो देखता रहा, अच्छा के लेने दे, देखी जाएगी अपनी तो जो बनेगी, उसकी जान बचा दी। वो अपना पड़ गया, सुबह फिर आंख खुली, अपना रोटी खाकर जान बचाई। कहते हैं उस एक भूख बाकड़ा ने उसकी जीवन दान दे दिया उस दूसरे को जो कि मरे था कतई, और आप भी बहुत भूखा था अपनी परवाह नहीं करी। तो उसके बदले में वो जिसने भूख बाकड़ी दी थी उस दूसरे भूखे को जिसकी जान बचाई थी, उसके बदले में वो व्यक्ति कई बार चक्रवर्ती राजा हुआ। एक भूख बाकड़ी देणते पर इसी व्यवस्था में देवा जो कि आप भी मरण में हो रहा था पर उसकी जान ज्यादा बेहतर समझी। बच्चे देखी जा गया हमने तो बेचारा जब इस पर उठा जाता ना बैठा जाता। तो कहते हैं उसके बदले में कई बार चक्रवर्ती राजा हुआ उस दान के बदले। तो यहां बंदी छोड़ कहते हैं कि बूक बाकला दिए विचार और बहे चकवे कई एक बार। अब एक बाणी में इतनी गहराई छपी हुई है कि कई बार चक्रवर्ती राजा वो बना। बिठल होकर रोटी पाई नाम देव की कला बधाई। ये बिठल होकर के भगवान ने जो ना विष्णु भगवान ने नाम देव का दूध पी लिया था, रोटी खा ली थी। महाराज कहने लगे भाई रोटी चौपड़ कौन राखी, कुत्ता लेकर बाद लिया नामदेव रोटी खा था, कुत्ता बनकर आ गया। और उसने बिठल भगवान दिखे लोगा ने कुत्ता दिखे छालना पकड़े जा। नामदेव कह भाई महाराज जी ये तो बिना चौपड़ी से, थोड़ा चौपड़ लो आ लो घी लेकर गिलड़ी पहुंचो पहुंचो बाद जादा। और नो कहे अच्छा बावड़ा भगत जी, कुत्ते नो कहे महाराज जी और कुत्ता रोटी खाए जा। कुत्ता डट गया रोटी चौपड़ी, दोनों ने रोटी कट्ठी खाई। लोग नौके कुत्ता गेल रोटी खावे, उन्हें कुत्ता दिखे और उसको भगवान नजर आवे विठल रूप में। विठल भगवान एक विशेष मूर्ति है वहां पर, इसमें महाराष्ट्र के अंदर है पता नहीं है, नामदेव जी महाराष्ट्र में हुए तो वहां विठल भगवान के नाम से जैसे यहां पर कृष्ण की मूर्ति है वहां पर विठल की मूर्ति बना करके वो लोग पूजते हैं। तो कहते हैं बिठल होकर रोटी पाई नाम देव की कला बधाई। धना भगत को दिया बीज जाका खेत ने पाया रीच। धना भगत जी ने बीज बांट दिया था बीज। अब देखो कहन न तो हम भी कहें सर आप भी कह दोगे, एक धना भगत ने देख बेचारे ने बीज दे दिया था, पर बीज का बांटना कोई बड़ कहां खेल नहीं से, कह तो देना आसान हम भी कथा सुना दें सा पर करके देखे इस काम ने जब पता चला। फिर उसके बदले में प्रतिक्रिया देखियो भगवान की उस परमात्मा की। अब हम तो लाख रुपया में तभी 2000 दिन त्यान छह बस सोचेंगे देवा के ना देवा, और कथा कहें और सुने और सुनावा चलो कोई नहीं, सुनते ज्ञान होगा विश्वास भी होगा। धन्ना भगत जावा था, कई साल में तो बारिश हुई, पहले इसी बारिश हुआ करती कभी कभी। उसकी घरवाली ने कहा कि लो जी भगत जी ये ज्वार बोया और चालन लग गई। जब जालन लग गया ना वो लेके ज्वार दड़ी पक्की, न्यो बोली देखे कदे इन्हें किधर राम बांट जा तू, इसने बोया ये नहीं बालक भूखे मर जाएंगे, राम भी मुश्किल तो बारिश हुई से। वो बोला ना बो क्या आऊंगा। उसने जाकर के रास्ते में जावा था बंदी छोड़। अब यहां फिर वही रहस्य आता है, जहां जिसको उभारना है बंदी छोड़ बिना कोई उभर नहीं सके। आपको 100 प्रमाण दूंगा ऐसे ऐसे और प्रमाणित करके दिखाऊंगा, दिखाएंगे बंदी छोड़ की वाणी को कि कबीर साहब आते हैं जब तत्पगजा सजीव का नयुकालीन की फिर दुर्गति कर देता है इन जीवों की, एक बार भक्ति करा दे, तीसरे में लूट ले, दूसरे में चौथे में कुत्ता बना के छोड़ दे, चल भाई गो, फिर आज ये कभी भक्ति करने दिल करे था। तो वहां पर सतगुरु महाराज 4-5 साधुओं के साथ साधारण से भक्त रूप में और आप भी राम 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 करते हुए जान लाग रहे। और राम राम का उच्चारण सुना तो धन्ना भगत ने देखा भगत जी यहां से, भगत जी हो राम राम भगत जी हो, वो खड़े हो गए। वो तो आई रहे थे बंदी छोड़ी सी कृपा करण की खातिर। कहने लगे कहां से आए हो अग भाई, 3 दिन हो गए रोटी नहीं मिली, मरण से भूखे, कितना आए सा भगत जी, कित जावा थे, हमने कोई इस राजस्थान में पानी पिलाने वाला भी नहीं मिलता, रोटी तो दूर की बात। और पहले ऐसा ही होता था, टूक नहीं मिला करता था, बागड़ी एरिया में आदमी आदमी ने रोटी नहीं दिया करता, अपनी बांध के ले जाया करते थे, सब जगह था वहां के। तो धन्ना कहने लगा महाराज जी, जो बोला भगत जी हम तो मरण न हो रहे संकत, अगर तो शाम पूरी नहीं आज मारे प्राण लिकट जाएंगे, 3 दिन हो गए रोटी नहीं मिली है। तो वो कहने लगा भगत महाराज जी मेरे पास तो ये ज्वार से थोड़ी सी ये खा देख लो महाराज, अकेला भाई ज्वार दे दे भगत जी हम तो मरे से भूखे, बैठ के सारे चारुआ ने किलो किलो ज्वार फटाफट खा गए, उनकी आंखें आ गया, भूखा मरदा करा के खा जा कुट, कहते हैं बाढ़ कूट कूट के खाई लोगों ने, बोधी बाढ़ को कूट के चपेट भरा, नितांत काट दे आपस में एक दूसरे ने खत्म हो जाते। तो ज्वार खा गए, धन्ना बैठा बैठा खुशी से, खवा के भी मन में नहीं आया, इतने ज्वार खवा दी बगर के कहेंगे, अकबोण की कही थी बो दिया, भगत अपने हिसाब से बोए हैं और जगत अपने हिसाब से बोए है। वो बोला गरवाड़ी आ गया वापस, कांकर कट्ठी करी खेत में भगा दी और काट दिए मोटे मोटे है जाइए। गरवाड़ी ने बोली के बोया अक बोया, अब झूठ भी नहीं, वो अपने हिसाब तो बो का आया से, जगत अपने हिसाब तो बोआ था, धर्म भी बोना होता है, असली बोना तो यू सजो कि हम धर्म पर कर लगाते हैं। अब महीने 2 महीने के बाद देखे हैं लोगों का तो ज्वार हो रही गोडा गोडा, यानी 3-2.5 फुट, और भगत जी का जा मेरी बेल और उसमें से मोटे मोटे तुम्बे जिसके अख्तारे बनते हैं। पड़ोसन ने आके बताया आए थारे तो बेल जामरी से ज्वार को ना अकना, ज्वार का पेड़ा भी कौन उसमें एक भी पौधा को नहीं। अब उसके दिमाग गोडे तक गए टूट, किसने खा ली मत है, ये भगत जी ने करा नास, ये भी कितना करका जरूर है। उस तो उड़ा नहीं बोली क्यों रोज की रोज माथा मारा इसकी गेला, अपना देख का आऊंगी, खेत में जाती है देखा स वही बात, इसे मोटे मोटे तुम्बे लाग रहे, उसका एक बात कसूता काम हो गया पारा शिखर में, बहुत काली मानी जुलम कर दिया इसने तो, दुनिया के ज्वार खड़ी और देख मारा ये वह लेकर एक तुम्बा घर न आगी, आका अपने पति यानी भगत धन्ना के ऊपर बहुत क्रोधित सा होकर कहने लगी कि ज्वार बोई थी, अका बोई थी अग झूठे, ये देखिए मतीरे लाग रहे, ये बालक तन्ना खांगे के नौका का उसके शर्मा मारा, शेर तो गया बचाओ धरती पर लग गया फूट गया, 2 टूक होते उसमें धड़ी पक्की ज्वार निकली, बोल बंदी छोड़ मारा। इसने देख के और वह एक बात धन्ना का नहीं देखा, जो नाडी आडी नाड़ करे ने लेट रहा था अपनी सिर बचाने की तरह, और दूसरी तरफ वह दड़ी पक्की ज्वार जो जमीन पर बिखर गई थी उसने देखा, कहने लगी महाराज यह ज्वार क्यों कर आ गई इसमें, अकमन नहीं बेरा भगवान क्यों कर आ गई, वो मालिक जाने और वो करणिया जाने। उसने वह ज्वार कट्ठी करी, क्यों टोटा बहुत था दुख बहुत था, घर न रख दी, लेकर गठ एक चादर बहुत बड़ी सी अगेठड़ी बांध के लाऊंगी, सारे मतीरा में पाओगी फिर तक, मतीरे इतने लाग रहे ऊपरा तली पड़े, अब बिछा कर चद्दर वा पागल सी होगी, जैसे कंगले ने धन दिख जा भूखे ने भोजन दिख जा, और वो भी इतना पागल सी होगी मारे धरके उड़े उसने मतीरे ने की चादर पे एक मारे मोगरा उसके दो टूक हो जा उड़े रिता दे फिर ठाक लावे ढूल आ दिया इतना ऊंचा और आसपास के देखे कि यह ज्वार कितना आवश है इसमें ज्वार कहां से आवश है पड़ोसी पड़ोसी सारे इकट्ठे हो गए देखे हैं कि भाई धन्ना के मतीरिया में ज्वार लकड़ा सा धन्या के मतीर तुम्बिया में ज्वार निकला सा गांव इकट्ठा हो गया सारे फड़ फड़ देखे हैं वो ढूल लाग गया इतना लंबा पूरी राश होगी कहते हैं उसी समय धन्ना भी पहुंच गया कहने लगा भगवान बेईमाना ना करिए अपना अपना ले जाना जितना तेरे घर में जरूर से साल भर का फालतू मत ले जाना तो वह कहन लगी ना सारी ले जाएंगी अगना सारी नहीं ले जाएगी अपने अपने हिसाब का ले जा वह लेगी दो गठ डोए तीन डोए चार डोए और बाकिया ने बोला भाई साबित गांव डोलो ले जाओ अपने को साबित गांव ले जाओ जिसने जितनी हो सकता उतनी ले जाओ फालतू ना ले जियो तो कहते हैं कि जब वह पांचवा छठा गेड़ा करन लागी पूरी गठड़ बांध ली और गाल दिन तीजा अपने पति ने अग तू नाश करवाओगा मारी ज्वार ने गांव ने बांटन लाग रहा गठड़ी दरें जाती उड़ा दो तीन ने ठवाई थी उसको घर पहुंची जब दो किलो रह गया उस गठड़ी में उसके सर पर दो किलो ज्वार रहेगी तो वह एकदम हैरान रहेगी धन्ना बोला भगतनी मैंने पहले कहा था तेरी जितनी जरूरत है वह तेरी आगी फालतू नहीं ला सकती तुम क्यों ना हो क्यों नहीं फेर जाएंगी फेर गई फिर आई मर्दी गांव ताई बोझ दाना नहीं रहा उसमें खाली गठड़ी वो चादर चादर रहेगी फिर उसने सबर कर लिया बात है कि मैं वो रस नहीं छेड़ती मैं इसने तो इसी प्रकार सारे गांव ने कहते हैं वह ज्वार ढोई आवश्यकता अनुसार बोल सतगुरुदेव तो इसी प्रकार कहते धन्ना भगत को दिया बीज जा का खेत निपाया रीज अब बीज का बांटना कोई बच्चों का खेल नहीं है को बांट के देखो पर महाराज कहे नो नहीं कदे को तड़के गिरा हुआ कितना प्रथम नियम से बंद है गुरु धारण करे पूरा गुरु यानी सत जिसके ऊपर पूरी परमात्मा की रजा हो उससे नाम ले फिर करनी करे और करनी करके फिर ही सा मौका हो फिर करके देखियो महाराज कहते हैं करनी कर जरना जरे सो साधु सिरपोस यानी करनी करे ये करनी कर रखी थी पहले धन्ना ने फिर वो काम किया तो फिर तमाशा देखे उसका अब तो अपनी अजमाई हुई बात कहें भगत जी लोग दंत कथा नहीं है ये हमने जो अजमाया सतगुरु की कृपा से वही आपको सुना रहे हैं द्रोप सुता को दिन ने लीर जाके अंत बढ़ाए चीर अब द्रौपदी के चीर हरण का और द्रौपदी के दान का दोनों का वर्णन एक चौपाई में आ गया रोटी चार बारिया गाली नरसिल्ला की हुंडी जाली सांवल सा सदा का सही जाकी हुंडी तत्पर लई रोटी चार भारिया गाली एक बार कहते हैं कि चार पांच साधु आ जाते हैं नरसी भगत जी के पास नरसी बहुत बड़ा सेठ था लेकिन भगवान कृष्ण के ऊपर अपने इष्ट देव के ऊपर उसने सारे धन को बांट दिया था लुटा दिया था धर्म कर दिया था कंगाल हो गया पहले क्या होता था कि ये बैंक नहीं थे हर शहर में कोई एक सेठ होया करता जिसकी हुंडी चला करती थी जैसे ड्राफ्ट बना दिया यहां कागज ले जाइए यहां पैसे जमा करा दीजिए आपको उस बैंक में उस शहर में पैसे मिल जाएंगे इस प्रकार हुंडी होया करती थी वो नॉमिनेटेड होया करते थे गवर्नमेंट की तरफ से भी कि ये सेठ जो हैं इतने साहूकार हैं ये हुंडी दे सकते हैं उनके पूरे प्रमाण होया करते गवर्नमेंट के कागजों में भी वो प्रमाणित होते कि कहीं धोखा ना कर दें किसी के साथ तो नरसी भगत सबसे बड़ा हुंडी करने वाला था तो वहां जाते हैं चार साधुओं ने पता था कि एक नरसी भगत से सेठ से पहले भी उन्होंने करवाई थी लेकिन जब वो गए वो तो बाहर बैठा खेता में झूठी गाल है एक ने पूछा भाई नरसी सेठ कहाँ है एक से पूछा कि वो तो भाई बाहर झोफड़ी में रहता है उन्होंने सोची चलो वैसे चला गया होगा वहां बैठा होगा वहां जाके कह लाला जी ये 500 रुपये ले और हुंडी बना दे हमने मुत द्वारका में जाना से वहां पर घुमा फिरांगे राम ऐसा काम से देखो हमारे पैसा ना खोज ले उन्होंने बोला भाई मत कंगाल हो गया मेरे द्वारे हुंडी नहीं बनती मेरे पास कुछ नहीं से भाई मैं तो राम नाम का तो सेठ सू नवला लाला जी दुख ही नहीं करा कर दे संतान है हम कितने बार ना आगे बार बार आवा से हमने बौला मत बनावे तूंडी बना दे ना तने श्राप दे देंगे। लाला जी ने सोची भाई ये अच्छे पल पड़े मेरे मन फेर कही अग लाला जी तू मान जा मेरी मारी बात ने दुखी ना करे तू जल्दी बना दे हमने देर हो से उन्होंने तो फट कुछ गांव वालों ने उसके उसके साथ मजाक कर दिया था शहर वाला ने वो बोले बस सब तो बड़ा सेठ बता दो हमने वो नरसी की तरह नरसी का नाम उन्होंने ज्ञान था न बोला सबसे बड़ा सेठ है तो नरसी है भाई रो नोर नोर ऐसे न बोला लाला जी हम सब पर पूछ का ऐसे ऐसी बात नहीं भाव ये से कहने का उसने मजबूर होकर के अपने परमात्मा को साक्षी लेकर एक कागज पर फटाफट लिख दी और सेठ का नाम उस अगले सेठ के नाम लिखनी पड़ती है कि ये फलाने सेठ से ले लेना मैं उसके साल भर में हिसाब आपस में वो कर लिया करते थे। तो भगवान कृष्ण के नाम यानी सांवल नाम के सेठ पर भगवान कृष्ण को सांवरिया कहते हैं सांवल कहते हैं तो सांवल सा सेठ के नाम ते वह हुंडी लिख दिया सांवल सा टीका चढ़ा के और 500 रुपये मन नगद वसूल पाए और ये पैसे इन साधुओं को दे दीजिए आपकी रकम सुरक्षित है ऐसा लिख के वह हुंडी दे दी। अब आगे जाके पूछे को सांवल नाम का सेठ ना मथुरा में द्वारका में मथुरा में नहीं द्वारका सब ने पूछ लिया सेठा पे भाई द्वार सांवल सा नाम का कोई सेठ नहीं है सांवल नाम का सा कोई नहीं है और नरसी तो भाई कंगाल हो लिया उसकी तो हुंडी फेल हो रही है बावड़ा तुम तो ठग लिए उसने अच्छे मूर्ख रह जा फंसे तुमने देखा नहीं झुफड़ी में बैठा होगा कहा बैठा था झुफड़ी मारी तकल मारी गई भाई अब सारे घूम फिर के आखिर में वो एक लवा जाके बेचारे अपने बैठ जाते हैं साधु बनी में इतने में अब नरसी देखा है क्योंकि जो परमात्मा पाश्रित हो जाता है यहां बैठा देख सकता है कि उनका काम कौन बना। नरसी ने सोचा भाई की बात होगी हाँ पीछे से नरसी ने उन 500 रुपया का भंडारा कर दिया सब संतों को भक्तों को खिला दिया तो उसके बदले में उसने वहां पहुंचना था भगवान ने फिर भी प्रगट नहीं हुए तो नरसी ने सोचा भाई की बात होगी इतना प्रगट हुए अपनी पत्नी ने बोला कि जो भंडारे का सामान आया था वो सारा बरता दिया या नहीं बरताया वह कहने लगे जी वैसे तो सारा बरता दिया पर ये पलोथन लगाते हैं ना जो रोटी के साथ सूखा आटा लगा कर फिर आके रोटी पोया करते हाथ से तो कहने लगे ये पलोथन की बचे है थोड़ा सा आटा यू पाइया से सवा पाइया इतना बच रहा से जो बोला रोटी बना फटाफट इसकी उसकी रोटी पानी का हाथ लगा करके चार रोटी बनी वो एक भगत को खिला दी उसी समय सांवल सा प्रगट हो गया। अब देखो भंडारे का एक नया पैसा एक एक नया पैसा ये हम हर एक को महाराज जो है ना शिक्षा दे रहे हैं जब वह उभारा होगा जब हम जैसे भंडारे के नाम का जो आया है चाहे आटा हो चाहे नमक हो उसको भंडारे पे लावे अगर इस पर नहीं लग सके तो अगले पर अपना नोट करके धर ले बच्चों का तो सारा लग जाना चाहिए या और कहीं भंडारा हो रहा है तो वहां पहुंचा देना चाहिए वो पैसा सारा भंडारे में लग जाएगा तो उस खाने देने वाले को पूरा लाभ मिलेगा ना तो नहीं मिलेगा ये नियम है। तो उन चार रोटी बनाकर बांट दी उसी समय भगवान कृष्ण के रूप में वो शक्ति और दोनों काना में तो कलम टांग रहा मारवाड़ी सेठ सिर पर टोपी और ढीली धोती और आके बही ले रहा काख में घूमदा फिरदा उड़े पहुंच गया ने बोला भगत जी महाराज जी आप नरसी की उंडी ले रहे सो अगर क्या कहा नरसी उसने तो महाराज जो है ना धोखा कर दिया अगना ना 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 न्यो ना कहो रहे वो धोखा करने का आदमी नहीं सह मारे गिल कर रहा ख्या रहे न्यो क्यों करना सह अगना धोखा करने का कौन ही रहे वो मैं सु भाई सांवल सेठ तू सह कहा अब हमने सारा ढूंढ लिया था अब कोई बात ना मैं थोड़ा सा लेट हो गया इसकी तो मेरी माफी मांगी उन तय भगवान मारे प्यारे भगत ते मारे भाई ते नरसी ते राजा थम पैसे ले लो उड़े ले गया सारे बाजार के बेचाले ने बोला बिछा हुआ अपना काम बड़े कहते हैं जब जो इतना बड़ा जोड़ा ले रहा था वो चांदी के नोट ने कटाकट गे रहे फटाफट 500 के 500 दुनिया देखे बाहर लेकर यू किता गया सेठ अरे बोला हाथ जोड़ के कौन सो नरसी ने कह दियो बार बार उंडी दूंगा, चाहे कितनी भेज दे उसकी। बोल सतगुरुदेव की। बोला नमस्कार कहना मेरा गलती की, क्षमा मांगो हूं भाई। उन्हें कही हो तो 500 रुपये जारी विवरण कित कितने उनको प्रकट कर दिए, दे दिए और उन्हें खूब मौज मनाई। तो यहां कहते हैं रोटी चार भारजा घाली, भारिया कहते हैं पत्नी को भारजा। नरसी की पत्नी ने चार रोटी जो बची हुई थी पलोथन की वह बनाई। रोटी चार भारजा घाली, नरशिल्ला की हुंडी जाली। सावण सौ सदा का साही, सदा का सेठ से अर्जा की हुंडी तत्पर लही। जड़कों दूध पिलाया जैन पूजा खा गए पाषाण, बलि को यज्ञ रची अश्वमेघ बावन होकर आयो मेद। नरसी जी ने भी पत्थर की मूर्ति को दूध पिला दिया था, नामदेव जी ने भी पिला दिया था, धन्ना भगत जी ने भी पिला दिया था, कर्मा बाई ने खिचड़ा खिला दिया था। परमात्मा कणकण में व्यापक है, जिसकी जो आस्था करता है, इतनी शक्तियां हर इष्ट के अंदर होती हैं, वो अपने हंस को चमत्कार ये दे दिया करता है। अब आकर के बंदी छोड़, अब देखो एक आरती में भी कितनी गजब की कथाएं लेकर सार क्या देवन से ही ध्यान से सुनना है। वो भगत वो संत आपको राज, ये परमात्मा आपको राज दे सकते हैं। जैसे भूख बाकड़ा दिए बेचार, बहे चकुए कई एक बार, तो भगवान के नाम पर उन्होंने जो दिया तो चक्रवर्ती राजा बना दिया, फिर गधे की जुन्नी में। इसी प्रकार पुण्य करने का लाभ इन इष्टों से भी होता है, खूब होस है। लेकिन जो बंदी छोड़ की शरण मा के ये दोनों काम करे जा तो दोनों लाभ होते हैं, मुक्ति भी होगी और वो ठाठ भी होंगे। अब ये प्रमाण करें से, जैसे तीन पेड़ जग दिया दान बलि, बावन को बलि छले निदान। अब यज्ञ करी बलि राजा ने, भगवान विष्णु ने आकर के बावना रूप बनाया, उसके बदले में उसको पाताल का लोक दे, पाताल का राज दे दिया, इंद्र की पदवी नहीं दी। उसके बाद फिर वो इंद्र की पदवी पावेगा, उसके बाद गदा बन जाओगा, वही बलि राजा। और बंदी छोड़ की शरणमाए पाछे के बनेगा, ये अब सुनिए के नितबन कपड़ा देते भाई जाकर नौलख बाल दाई अपना। इसी प्रकार सतगुरु महाराज ने बताया कि सर्वस सौंप देत साहेब को का जिन केसरिया, सर्वस सौंप देत साहेब को, सर्वस यानी सब कुछ परमात्मा के नाम पर जो सौंप देते हैं उन्हीं के काज सरेंगे। सर्वस सौंप देत साहेब को का जिन्हों के सरिया, के जिस प्रकार भगवान कबीर साहब क्या किया करते थे कि अपनी ताणी बना करते थे, और ताणी बनकर वो रेजे को जितना बिक जा करता था, मान लो 5 रुपए का बिक गया, 2 रुपए का राशन घर में आवश्यक है तो 3 रुपए का वहीं पर भंडारा कराया करते थे। तो इस प्रकार करने से सतगुरु महाराज ने बताया है तो आप पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हो। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि जब समय सजा, किसी ने मजाक कर दिया था बंदी छोड़ के नाम पर कि कबीर भंडारा करेगा और 18 लाख व्यक्ति आसपास के काशी में इकट्ठे हो जाते हैं बंदी छोड़ को नीचा दिखाने की खातिर, किसी ने धोखे में वो पत्र डाल दिए थे। तो बंदी छोड़ कहते हैं जो इस ईश्वर के नाम पर सर्वस्व प्राख्या वो दूर नहीं से। उसी समय कबीर साहब ने यानी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने केसों का रूप बनाया और 9 लाख बैलों का ऊपर और बॉडी भर के उनमें गुणा में, महाराज कहते हैं इसका बहुत लंबा प्रकरण से, इसको थोड़ा बाद में लेंगे, हम मोटा मोटा सुना रहे हैं। तो 9 लाख बैलों का ऊपर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष केशव रूप बना कर आ जाते हैं और 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन तक भोजन करवा करके चले जाते हैं। अब कहते हैं बंदी छोड़ के अगर हम इस ईश्वर के नाम पर न्यू, ये एक उदाहरण दिया उन्होंने, एक करके दिखाया बंदी छोड़ने के मैं दूर नहीं सु, जब तुम न्यू होकर चलोगे तो भी दूर नहीं सु, तो उसके बदले में 9 लाख बैलों का ऊपर और पका पकाया तंबू ताण दिए सारे काशी के चौपड़ के बाजार में, और वहां पर इतनी ऊंची पूरी पूरी है तो पूरिया का ढूला गिरा पाड़ की पाड़ पड़ी से, 18 लाख आदमियों को जमाना को हंसी खेलो से। महाराज के बिना पकाया पक रहा ना चिपी रांधनी, चौपड़ के बाजार लगी है चांदनी, बड़े बड़े मसाल चलसरे स्थान स्थान पर आप पे और जो जहां बैठा सन तो उसको वहीं भोजन मिल रहा से। चावल पड़े हैं तो पके पकाए नीचे सुंदर सफेद उनके ऊपर कपड़ा का ऊपर के मजा उनका मिट्टी भी लग रही हो और पाल की पाल पड़ी से। सब्जी है सूखी तो सब्जियों का ढूल लाग रहा से और बना रखा तो उन बर्तनों का बना रखे कढ़ाए के कढ़ाए भरे पड़े से। तो इस प्रकार उन्होंने जमा दिया। तो यहां महाराज कहते हैं फिर दूसरा नाम क्या है कि अवगत केस, दूसरा काम क्या बंदी छोड़का कि अवगत केसो नाम कबीर तत टूटने जम जंजीर। अब काल की जो असली दुख से हमारे को दे रखा जन्म और मरने का ये भी बंदी छोड़ कबीर साहब की कृपा बिना नहीं कट सकता। इनकी शरण में दोनों लाभ उनकी शरण में एक लाभ। अब देख लो कहते वो लाभ चाहिए वो भी दूंगा तुम्हें और साथ में तुम्हें मुक्त कर दूंगा जो कि असली दुख हमारा है। इस दुख को हम समझ नहीं पांदे। हम इन्हें रिवाज मान रखी है कि भाई बच्चे भी होया करें पाल पोष दे ब्याथा दे निफराम होगे। निफराम क्या होगी तो दुर्गति मोल ले ली तना आगे की आगे जो पहाड़ तो बड़ा दुख से भी आने वाला तेरे ऊपर। कुत्ता कल देखी हुआ खाद ली सी कुतिया जब तया पटराणी बनी बैठी थी ने कहती कि ले रहा सर सत्संग तो गंदी औरत जाया करे सत्संगा में लफंडर आदमी आए काम से अरे वो कुतिया बनकर वो अभी खाज लाग रही सारे मुंह पर कर कड़मा कर उसके इवॉर्ड टूक ने जूता पिटती हंड से और सत्संग में भी आओ से। तो बात यह है कि हम अब मौका है महाराज कह समय है भाई चेत सके तो चेत। अब चेतन का समय आ गया है जागरण का समय आ गया है। तो यहां कहते हैं कि रोटी तिमर लंग को दीनी ताते सात पातशाह लेनी। कबीर साहब कहते हैं कि तने राज भी दूंगा सात पीढ़ी का राज तिमर लंग नाम के तिमूर लंग नाम के एक लोहार को। एक दो रोटी लेकर उसकी मां आई थी गरीब हालत थी और एक रोटी खाई थी कबीर साहब ने एक रोटी के बदले में और सात पीढ़ी का राज तिमर लंग को दे दिया। ये सोर्ट करके सुना रहा हूं क्यों आपको कई बार सुना रखी है कथाएं लंबी लंबी से पर इतना समय नहीं है ज्यादा क्योंकि सात दिन में तो यो तो छह महीना में भी पूर खोल कर ना सुनाया जा सकता बंदी छोड़कर लगातार सुनो जब भी क्योंकि ये कथाएं हम हर सत्संग में सुना देते हैं आपको इस करके अब यहां थोड़ी सोर्ट ले रहे हैं। तो बंदी छोड़ने उसकी सात पीढ़ी का राज दिया तैमूर लंग को। कहते हैं रोटी ही के राजर पाट रोटी ही के हेंग ठाठ रोटी माता रोटी पिता रोटी काटे सकल बिथा दास गरीब कहें दरवेशा रोटी बाटो सदा हमेशा। अब दूसरी आरती है बड़ी अन्देव की बड़ी आरती उसके अंदर भी बंदी छोड़ने एक विशेष रहस्य दबा रखा है। आरती अन्देव तुम्हारी सुर नर मुनिजन अन के हारी चे देवता हो कोई भी है वह रोटी अन्न खाते हैं अन्न बिना गुजारा नहीं हो सकता। 33 कोट करत है आशा अंजन संयम पूर्ण स्वासा अंत कोट वैष्णो धुन गावे अन्न पुरुष का भोग लगावे वशिष्ठ विश्वामित्र व्यासा अन्न देव की करते आशा। कोई भी ऋषि हुआ चाहे संत हुआ अन्न की आवश्यकता पड़ी। मारकंड लोमस ऋषि लाहा नाम देव का बड़ा उमहा। लोमस ऋषि आज बहुत बड़ी उम्र के सबसे ज्यादा लंबी उम्र आयु है उनकी और उन्होंने भी कहे रोटी बिना काम नहीं चला। मारकंडे भी बहुत बड़ी उम्र के हैं बहुत अच्छे तपस्वी हुए हैं साधक हुए हैं उन्होंने भी भोजन पाना यानी अन्न सबसे उत्तम बताया सतगुरु ने अन्न दान भी बहुत उत्तम है। शेष पुंडरीक पारासर परसे अन्न देव को नितूट चर्चे शेष महेश गणेश्वर गौरा अन्न देव को पावे भौरा शंभु मुनु प्रियवर्त उत्पान उत्तानम ध्रु प्रहलाद अन कुर्बानम काग भूषण अन की आशा पुरुष विदेही शब्द निवासा 64 योगिनी 52 बीरा अन को पावे नाम कबीरा अन भोगे बाजीद फरीदा अन बिन कमल ना हो वह सीधा। रोटी खाए बिना कड़का बांस सीधा नहीं रहेगा कमल मुस जाते हैं जो अंदर परमात्माओं के दर्शन होते हैं जिन पे अन खाने से बस खुले रहते हैं उनमें शक्ति रहती है और अन्न खाने से फिर वो अपनी साधना से खिल जाते हैं। अगर अन्न नहीं खावे तो वो कति खत्म हो जाते हैं मुरझा करके इकट्ठे हो जाती खालड़ी ने उनकी छोटी छोटी जमानुबंद हो जाती है। अन्न खाने से वो थोड़े सी करड़ में रहते हैं और फिर जाप मंत्र से वैसे खिल जाते हैं उसमें ईश्वरीय शक्तियों के दर्शन होते हैं। अन्न बिन कमल ना हो वह सीधा कमल हमारे शरीर के अंदर है जो कि ब्रह्म वेदी में भी आप रोजाना पढ़ते हो। जग सुनही को भोजन दीना दीदार हुए बाजीद अकीना। बाजीद का एक प्रमाण से कि एक बुढ़िया रोटी ले जाओ थी खेत में, चार रोटी उसने ले रखी थी अपना काम करने खातिर, गुजारा पेट की खातिर कोई काम जारी थी मजदूरी में। आगे बाजीद नाम के संत भक्ति कर रहे थे। ये बाजीद पहले राजा था, एक ऊंट के मर जाने से इसने राज छोड़ दिया था कि जब ऊंट मर गया था हम भी मरेंगे भाई, यू काहे का फिर राज और क्या का यू पाठ, इन छोड़ डमडमे ने बावड़ा, दो दिन का जीवन से कितना कुत्ते बने हन डांगे। इस बात का उद्देश्य रखते हुए उसने राज छोड़ दिया था, भक्ति करा करता था। कई वर्षों की 50-20-30 साल की भक्ति जब उसकी होली थी तो वो एक कुतिया ब्यागी उसके आश्रम के यानी झोपड़ी के साथ, और कुतिया भूखी कुतिया जो बंदे उसने बहुत भूख लगा कर बेचारी ने अपने कुतरुआ ने भी खा जा कर, जब भूख उस समय पर उसको टूक नहीं मिला था, इतनी भूख कसाई हो जैसे। तो कहते हैं कुतिया का ब्याणा होया और वो उसका आश्रम की तरफ भाग्य आना हुआ, भूखी मरे देख लिया उसने भी कुतिया ब्याई से 4-5-6 बच्चे से। इसी समय वह बुढ़िया आ जाती है वहां पर राई रास्ते में, सारे का रास्ता था। उस माई ने कहा, माई को कहने लग्या वो बाजीद, माई माई आखा महाराज के एक बात सुनना, क्या के बुढ़िया या कुतिया ब्याई हुई से और इसने बहुत भूख लगी है, एक रोटी गिर दे। अब बुढ़िया बहुत शानी थी, वानो बोली महाराज मेरी खून पसीने की कमाई है, नो कुकुर गिर दो, अग जो चावे सो ले ले, अग वचन दे दे, अग दे दिया अपनी चौथे हिस्से की कमाई दे दे, मैं एक रोटी गेर दूंगी।